एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में।
आज हम एक ऐसी किताब की परतों को खोलने जा रहे हैं जो पढ़ने के बाद शायद आप अपने हर छोटे बड़े फैसले को शक की नजर से देखने लगे।
हाँ बिल्कुल।
किताब का नाम है प्रिडिक्टेबली इरेशनल और इसके लेखक हैं डैन एरियली।
हाँ, और ये नाम अपने आप में ही कितना दिलचस्प है ना। प्रिडिक्टेबली इरेशनल मतलब जिसका अंदाजा लगाया जा सके, ऐसी अतार्किकता।
बिल्कुल।
ये किताब सीधे उस सवाल से टकराती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या हम वाकई सोच समझकर एकदम लॉजिकल होकर अपने फैसले लेते हैं या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही होती है।
बिल्कुल।
और ये सवाल आज की दुनिया में और भी जरूरी हो जाता है जहां हमें हर रोज सैकड़ों चुनाव करने पड़ते हैं, सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के निवेश तक, मतलब कितना कुछ।
सही बात है।
ये किताब दावा करती है कि हम उतने तर्कसंगत नहीं हैं जितना हम मानते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी अतार्किकता, हमारी ये गलतियां भी एक पैटर्न फॉलो करती हैं।
हाँ, एक पैटर्न है।
और इसी पैटर्न को समझना इस चर्चा का, समझ लीजिए, मिशन है।
तो चलिए इस पैटर्न को समझने की शुरुआत करते हैं लेखक को जानकर। डैन एरियली कोई आम प्रोफेसर नहीं है। हाँ, वो ड्यूक यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान और व्यवहारिक अर्थशास्त्र यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के जाने माने प्रोफेसर हैं। और ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र अपने आप में एक दिलचस्प फील्ड है।
हाँ बिल्कुल।
ये इकोनॉमिक्स को इंसानी मनोविज्ञान की नज़र से देखता है।
सही कहा। लेकिन जो बात डैन एरियली को खास बनाती है वो सिर्फ उनकी डिग्रियां नहीं बल्कि उनका अपना निजी अनुभव है।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जब वो सिर्फ 18 साल के थे, एक भयानक हादसे में उनका शरीर 70% तक जल गया था। उन्होंने लगभग 3 साल अस्पताल में बिताए। सोचिए वो दौर कैसा रहा होगा।
बहुत मुश्किल। और उसी मुश्किल दौर में वो असहनीय दर्द सहते हुए उन्होंने मरीजों, नर्सों और डॉक्टरों के व्यवहार को बहुत करीब से देखना शुरू किया।
अच्छा।
उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, जैसे क्या दर्दनाक पट्टियों को तेजी से खींचकर हटाना वाकई कम दर्द देता है जैसा नर्सें मानती थीं, या धीरे धीरे हटाना बेहतर होता। यहीं से उनके अंदर इंसानी फैसलों, दर्द की धारणा और अतार्किकता को लेके गहरे सवाल उठे।
हाँ, तो मतलब वो अनुभव एक तरह से उनकी रिसर्च की नींव बन गया।
बिल्कुल। उस अनुभव ने उन्हें अकेडमिक दुनिया से हटकर असल जिंदगी की सच्चाइयों से जोड़ा।
सही।
उनके पास मनोविज्ञान और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में पीएचडी हैं, लेकिन वो मुश्किल वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों के लिए दिलचस्प कहानियों और अनोखे प्रयोगों के जरिए समझाने में माहिर हैं।
हाँ, उनकी बातें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, हंसाती हैं और हैरान भी करती हैं।
बिल्कुल। तो अब आते हैं उनकी सबसे मशहूर किताब प्रिडिक्टेबली इरेशनल पर। इसका केंद्रीय विचार क्या है? बहुत सीधा और सपाट। पारंपरिक अर्थशास्त्र जो मानता है कि इंसान एक तर्कसंगत प्राणी है जो हमेशा अपना फायदा सोचकर फैसले लेता है, वो धारणा काफी हद तक कह सकते हैं गलत है।
अच्छा, मतलब हम उतने लॉजिकल नहीं हैं।
नहीं है, हम असल में भावनाओं, सामाजिक दबाव, हमें चीजें किस तरह पेश की जाती हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट,
कॉन्टेक्स्ट,
और हमारे दिमाग की कुछ अंदरूनी कमियों या झुकाव जिन्हें कॉग्निटिव बायस कहते हैं,
हाँ,
उनके शिकार होकर फैसले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम ड्राइवर सीट पर हैं, पर अक्सर हम बस यात्री होते हैं।
अरे वाह, ये तो बड़ी बात है।
लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण है।
अच्छा।
हाँ, एरियली कहते हैं कि हमारी ये अतार्किकता रैंडम या बेतरतीब नहीं है, ये सिस्टमैटिक है, मतलब इसका एक ढर्रा है, एक पैटर्न है।
ओके।
और अगर हम इस पैटर्न को समझ लें तो न सिर्फ हम अपनी गलतियां कम कर सकते हैं, बल्कि हम ऐसे सिस्टम और माहौल भी बना सकते हैं जो हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करें।
अच्छा, तो ये किताब सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान की ओर भी इशारा करती है।
बिल्कुल।
चलिए अब इस किताब के कुछ दिमाग खोलने वाले अध्यायों और उनके जो हगी की आइडियाज हैं,
हाँ
उनमें उतरते हैं।
हाँ जरूर।
पहला है सापेक्षता का सच, द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। इसका सीधा सा मतलब है हम चीजों को उनके अपने आप में कैसा है इस आधार पर नहीं आंकते, हम हमेशा हमेशा तुलना करते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल। ये बड़ी अजीब बात है पर सच है। किसी चीज की कीमत, किसी की खूबसूरती या किसी नौकरी का आकर्षण, हम ये सब अकेले में तय नहीं कर पाते। हम उसे उसके आसपास मौजूद दूसरी चीजों से तौलते हैं।
सही।
और यहीं पर बाजार हमारी इस आदत का फायदा उठाता है, जिसे आर्यली कहते हैं डिकॉय इफेक्ट।
डिकॉय इफेक्ट, डिकॉय मतलब एक चारा, एक छलावा।
हाँ बिल्कुल।
इसका एक क्लासिक उदाहरण एरियली ने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के सब्सक्रिप्शंस के साथ किया था।
हाँ वो बहुत फेमस है।
छात्रों को तीन ऑप्शन दिए, पहला सिर्फ ऑनलाइन $59 में, दूसरा सिर्फ प्रिंट $125 में, और तीसरा प्रिंट और ऑनलाइन दोनों, वो भी $125 में।
अच्छा तो दूसरा ऑप्शन तो एकदम बेकार हुआ ना।
जाहिर है, कोई उसे क्यों चुनेगा जब उतने ही पैसों में तीसरा बेहतर ऑप्शन मिल रहा है।
हाँ
तो ये दूसरा ऑप्शन ही डिकॉय था।
अच्छा
इसका इकलौता मकसद था तीसरे ऑप्शन प्रिंट प्लस ऑनलाइन वाले को सुपर आकर्षक दिखाना $59 वाले पहले ऑप्शन के मुकाबले।
और हुआ क्या, लोगों ने क्या चुना?
ज्यादातर छात्रों ने तीसरा ऑप्शन चुना, लेकिन मजे की बात यह है कि जब एरिली ने वो बेमतलब का दूसरा ऑप्शन हटा दिया
हाँ
तो पता है क्या हुआ, ज्यादातर छात्रों ने सबसे सस्ता $59 वाला पहला ऑप्शन चुन लिया।
क्या बात है, मतलब बस एक फालतू ऑप्शन हटाने से पसंद बदल गई।
सोचिए, बस एक बेकार से ऑप्शन को हटाने से लोगों की पसंद पूरी तरह बदल गई। तो ये डिकॉय चीज असल में हमें एक खास तरफ धक्का देती है बिना हमें पता चले।
अगली बार कुछ खरीदते समय ध्यान रखना होगा इसका।
बिल्कुल। अब आते हैं एक और बड़े भ्रम पर,
हाँ
आपूर्ति और मांग का भ्रम, द फैलेसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हमें लगता है कि चीजों की कीमत बाजार में उनकी मांग और आपूर्ति से तय होती है।
हाँ यही पढ़ाया जाता है।
पर एरियली कहते हैं रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है और वो है एंकरिंग।
एंकरिंग।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में कोई पहली सूचना, खासकर कोई नंबर या कीमत, एक लंगर की तरह जम जाती है।
लंगर की तरह।
हाँ, फिर हम बाद के फैसले उसी लंगर के आसपास लेते हैं, भले ही उस पहली सूचना का कोई तुक हो या ना हो।
ये थोड़ा डरावना है ना?
हाँ बहुत। इसका एक कमाल का प्रयोग देखिए, एरियली ने अपने छात्रों से कहा कि वो अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के आखिरी दो अंक लिखें। सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसका क्या लेना देना।
हाँ वही तो। फिर उन्होंने कुछ चीजों की नीलामी की, जैसे वाइन की बोतल, चॉकलेट, कीबोर्ड। आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ।
क्या सोशल सिक्योरिटी नंबर का असर हुआ?
बिल्कुल। जिन छात्रों के सोशल सिक्योरिटी नंबर के अंक ज्यादा थे, मान लीजिए 80-99, उन्होंने चीजों की बोली भी ज्यादा लगाई।
सच में?
हाँ, और जिनके अंक कम थे, जैसे 0-1-20, उन्होंने कम बोली लगाई। वो नंबर उनके दिमाग में एक एंकर बन गया और चीजों की कीमत आंकने की उनकी समझ को बिगाड़ गया।
अरे बाप रे,
इससे पता चलता है कि बाजार में पहली कीमत अक्सर कितनी मनमानी हो सकती है।
कमाल है, दिमाग का खेल। अच्छा, और अब चलते हैं एक ऐसे शब्द की ओर जो शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग टूल है, मुफ्त।
हो हाँ, फ्री
यानी शून्य लागत की कीमत, द कॉस्ट ऑफ जीरो कॉस्ट। एरियली का कहना है कि फ्री शब्द सुनते ही हमारा लॉजिकल दिमाग छुट्टी पर चला जाता है।
इसे जीरो प्राइस इफेक्ट कहते हैं। मुफ्त चीज का आकर्षण उसकी असल वैल्यू से कहीं ज्यादा होता है। यह हमें अजीबोगरीब फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। जैसे एक प्रयोग में लोगों को दो विकल्प दिए गए, एक महंगी बढ़िया लिंट ट्रफल चॉकलेट 15 सेंट की
ओके।
और एक आम हर्षी किस चॉकलेट 1 सेंट की।
ठीक है, तो क्वालिटी और कीमत का अंतर देखते हुए ज्यादातर लोगों ने महंगी ट्रफल चुनी होगी, सिर्फ 14 सेंट ज्यादा देकर बेहतर चीज।
बिल्कुल सही, ज्यादातर ने ट्रफल चुनी, लेकिन फिर एरली ने दोनों की कीमत 1 सेंट कम कर दी।
अच्छा,
अब ट्रफल 14 सेंट की थी और किस मुफ्त।
ओहो, मुफ्त।
हाँ
हाँ,
अब बताइए क्या हुआ होगा।
मुफ्त का लालच, मुझे लगता है ज्यादा लोगों ने हर्षी किस चुन ली होगी।
एकदम सही, जैसे ही किस मुफ्त हुई, ज्यादातर लोग उसी पर टूट पड़े। भले ही ट्रफल अब भी सिर्फ 14 सेंट ज्यादा में मिल रही थी और शायद बेहतर सौदा था।
मुफ्त का टैग लगते ही लॉजिक खिड़की से बाहर।
जाए 1000 रुपए का सामान भर लेते हैं ताकि 50 रुपए की शिपिंग बच जाए, है ना?
हाँ, ये तो रोज की कहानी है। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प पहलू देखते हैं।
जी,
सामाजिक बनाम बाजार के मानदंड, द कॉस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स।
एरियली कहते हैं कि हम असल में दो अलग अलग नियमों के सेट के हिसाब से जीते हैं।
दो अलग दुनियाएं?
हाँ, एक है सामाजिक दुनिया जहाँ दोस्ती, प्यार, मदद, एहसान चलते हैं। यहाँ पैसों का हिसाब किताब नहीं होता।
मतलब रिश्तों की दुनिया।
हाँ, और दूसरी है बाजार की दुनिया जहाँ पैसा, कीमत, फायदा, सौदा, कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। यहाँ हर चीज की एक कीमत होती है।
ठीक है।
गड़बड़ तब होती है जब हम इन दोनों दुनियाओं को मिक्स कर देते हैं।
मिक्स कर देते हैं
कैसे?
खासकर जब हम सामाजिक रिश्तों में बाजार के नियम यानी पैसा घुसा देते हैं।
ओ हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है।
इसका एक बहुत चौंकाने वाला उदाहरण इसराइल के एक डे केयर सेंटर का है। पेरेंट्स अक्सर बच्चों के लेने देर से आते थे, जिससे स्टाफ को परेशानी होती थी।
हाँ, ये तो आम समस्या है।
तो सेंटर ने सोचा, चलो देर से आने पर जुर्माना लगाते हैं, शायद इससे लोग जल्दी आने लगे।
लॉजिकल लगता है।
पर क्या हुआ? हुआ ठीक उल्टा। जुर्माना लगने के बाद पेरेंट्स पहले से भी ज्यादा देर करने लगे।
क्या
ज्यादा देर? ऐसा क्यों?
क्योंकि जुर्माने ने उनके अंदर की शर्म या सामाजिक जिम्मेदारी, वो सोशल नॉर्म जो था,
हाँ हाँ,
उसे खत्म कर दिया। अब वो सोचने लगे, हम पैसे दे रहे हैं तो ये हमारी खरीदी हुई सुविधा है, ये मार्केट नॉर्म है।
अच्छा, मतलब अब वो गिल्टी महसूस नहीं कर रहे थे।
बिल्कुल, हम देर से आ सकते हैं। और सबसे बुरी बात, जब बाद में जुर्माना हटा लिया गया तब भी लोग देर से आते रहे।
और एक मतलब नुकसान परमानेंट हो गया।
हाँ, सामाजिक नियम एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है।
ये तो भारत में कितना सच है, जहाँ रिश्तों में पैसों की बात बहुत नाजुक होती है। किसी दोस्त की मदद करने के बाद अगर आप पैसे मांग लें तो रिश्ता बदल सकता है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और मानवीय कमजोरी, स्वामित्व की ऊंची कीमत, द हाई प्राइस ऑफ ओनरशिप।
अच्छा,
इसे कहते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट।
एंडाउमेंट इफेक्ट,
आसान भाषा में, जिस चीज पर हमारा ठप्पा लग जाता है कि ये मेरी है, उसकी कीमत हमारी नजरों में आसमान छूने लगती है।
हाँ, ये तो होता है। हम अपनी चीजों से प्यार करने लगते हैं, चाहे वो पुरानी कार हो या बसु की पुराना सोफा।
सही,
हम उसे खोने के ख्याल से ही डरते हैं। इसे लॉस अवर्शन कहते हैं शायद।
हाँ बिल्कुल। और हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारी उस चीज को उतनी ही बेशकीमती समझती है जितनी हम।
हाँ ये तो है।
इसका जबरदस्त उदाहरण है ड्यूक यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल फाइनल मैच के टिकटों का प्रयोग।
बास्केटबॉल टिकट।
अच्छा, जिन छात्रों को लॉटरी में टिकट मिले थे उनसे पूछा गया कि वो कम से कम कितने में बेचेंगे। उनका औसत जवाब था लगभग $2400।
$2400 एक टिकट के लिए?
हाँ। अब उन छात्रों से पूछा गया जिनके पास टिकट नहीं थे और वो खरीदना चाहते थे, कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे देंगे। उनका जवाब था सिर्फ $175।
अरे बाप रे, $2400 बनाम $175, इतना ज्यादा फर्क?
हाँ, सिर्फ मालिक बन जाने भर से कीमत की धारणा में इतना बड़ा फर्क।
मतलब मेरी चीज तो सोना है, तुम्हारी है तो
मिट्टी।
हल्का मजाक में
हंसते हुए,
कुछ ऐसा ही।
शायद इसीलिए हम अपना पुराना सामान बेचने में इतना मोलभाव करते हैं।
हो सकता है। और आखिर में एक और कमाल का कॉन्सेप्ट
बताइए,
अपेक्षाओं का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस।
यानी हमारी उम्मीदें हकीकत को बदल सकती हैं।
उम्मीदें हकीकत को? कैसे?
जो हम सोचते हैं वैसा ही हमें महसूस होने लगता है। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं।
प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ सुना है इसके बारे में।
इसका एक मजेदार उदाहरण है MIT में बियर का प्रयोग। छात्रों को दो तरह की बियर पिलाई गई, एक सादी बियर,
ठीक है,
दूसरी बियर में कुछ बूंदे सिरका, विनेगर मिलाया गया।
सिरका बियर में?
हाँ, कुछ छात्रों को पीने से पहले बता दिया गया कि इसमें सिरका है, कुछ को नहीं बताया गया।
अच्छा, फिर
अंदाजा लगाइए क्या हुआ। जिन लोगों को नहीं पता था कि बियर में सिरका है, उन्हें वो बियर पसंद आई,
सिरके वाली।
हाँ, लेकिन जिन लोगों को पहले ही बता दिया गया था, उन्हें वही बियर बेहद खराब लगी।
अरे मतलब सिर्फ बताने से स्वाद बदल गया?
सिर्फ बताने भर से, अपेक्षा बदलने से उनका स्वाद का अनुभव बदल गया।
कमाल है।
और ये सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। एक और प्रयोग में लोगों को नकली दर्द निवारक दी गई, असल में विटामिन सी की गोली थी।
अच्छा।
एक ग्रुप को बताया गया कि ये गोली $2.5 की है, बहुत असरदार है। दूसरे ग्रुप को बताया गया कि ये सिर्फ 10 सेंट के है। नतीजा, जिन लोगों ने महंगी गोली खाई थी उन्होंने दर्द में कहीं ज्यादा राहत महसूस की।
महंगी वाली ने ज्यादा काम किया, भले ही वो नकली थी।
हाँ, कीमत ने असर की उम्मीद पैदा की और उस उम्मीद ने सच में शारीरिक असर दिखाया।
अविश्वसनीय।
तो इन सभी कहानियों और प्रयोगों से कुछ बड़े विषय उभर कर सामने आते हैं।
हाँ, क्या है वो मुख्य बातें?
पहला तो यही कि हम सोचते हैं कि हम तर्कसंगत हैं, पर ये अक्सर एक भ्रम होता है।
भारत में ही देख लीजिए, शेयर बाजार में लोग अक्सर दूसरों को देख कर या घबरा कर पैसे लगा देते हैं या निकाल लेते हैं और बाद में उसे लॉजिकल फैसला बताते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। हमें चीजें कैसे और किन चीजों के साथ दिखाई जाती हैं, ये हमारी पसंद को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।
हाँ, मॉल में चीजों की सजावट से लेकर शादी के लिए दिखाए जाने वाले रिश्तों तक, सब जगह ये लागू होता है।
तीसरा, मुफ्त शब्द का जादू।
भारत में बाय वन गेट वन फ्री का क्रेज कौन नहीं जानता।
हाँ बिल्कुल, हम अक्सर वो चीजें भी ले लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं, बस क्योंकि साथ में कुछ फ्री मिल रहा है।
चौथा, सामाजिक और बाजार के नियमों की अदृश्य दीवार। हमें यह समझना होगा कि कब मदद दोस्ती है और कब वो एक सौदा बन जाती है।
हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक ताना-बाना बहुत मजबूत है, ये संतुलन साधना और भी जरूरी है।
पांचवा, मेरा है का मोह। वो पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा या पहली कमाई से खरीदी बाइक जिसे बेचने का मन नहीं करता, भले ही अब उसकी कोई उपयोगिता ना हो।
ये एंडोमेंट इफेक्ट हमारे अंदर कितना गहरा बैठा है।
और छठा, अपेक्षाएं हकीकत गढ़ती हैं। क्या ब्रांडेड दवा वाकई ज्यादा असरदार है या हमें ऐसा लगता है?
हाँ, या क्या किसी बड़े डॉक्टर पर भरोसे से ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है? हमारी उम्मीदें हमारे अनुभव को रंग देती हैं।
इस किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो इन गहरी बातों को बहुत खूबसूरती से समेट लेती हैं।
हाँ, कौन सी हैं वो, कुछ बताइए।
जैसे एरियली कहते हैं, हम एक ऐसे खेल के मोहरे हैं जिसकी ताकतों को हम ज्यादातर समझ नहीं पाते।
ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, पर यह हमें जगाता है कि हम कितने अनजाने मनोवैज्ञानिक प्रभावों के तहत जी रहे हैं।
बिल्कुल। एक और सोचने वाली बात, एक बार जब आप बाजार की मानसिकता में आ जाते हैं तो सामाजिक मानसिकता गायब हो जाती है।
ये रिश्तों में पैसे को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।
सही। और ये भी कितना सही है, जो उत्पाद की गुणवत्ता की समस्या लगती है वो असल में ग्राहक की अपेक्षा की समस्या होती है।
वाह, मतलब हमारा अनुभव कितना व्यक्तिपरक, कितना सब्जेक्टिव है, उम्मीदें ही दुनिया दिखाती हैं।
और सबसे खरीम बात, जो किताब का टाइटल भी है, हम न केवल तर्कहीन हैं बल्कि पूर्वानुमानित रूप से तर्कहीन हैं। हमारी तर्कहीनता बार बार उसी तरह होती है।
हाँ, यही इस किताब की सबसे बड़ी देन है, हमारी गलतियों में पैटर्न है।
बिल्कुल।
और अगर पैटर्न है तो उसे समझा जा सकता है, उसे सीखा जा सकता है और शायद उसे बदला भी जा सकता है।
एकदम सही।
तो सवाल उठता है कि इस सारी जानकारी का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, इसका व्यावहारिक इस्तेमाल क्या है?
बहुत कुछ किया जा सकता है। पैसे के मामलों में सोचिए, जब कोई बड़ी चीज खरीद रहे हों या सैलरी पर बात कर रहे हों, तो सामने वाले की पहली पेशकश, वो जो एंकर होता है,
हाँ, एंकर,
उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। अपनी रिसर्च करें, अपनी जरूरत समझें।
सही। और मुफ्त का क्या करें?
मुफ्त के चक्कर में पड़ने से पहले हिसाब लगाएं, क्या कुल खर्च कम हो रहा है, क्या वाकई उस चीज की जरूरत है। और बचत, वो तो हमेशा टालते रहते हैं।
अगर बचत या निवेश टालते रहते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके अपनाएं, बैंक को कहें हर महीने खुद ही पैसा काट ले, ये प्री कमिटमेंट आपको आलस से बचाता है।
ये अच्छा आइडिया है। और रिश्तों के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
सोच समझ कर तय करें कि कब मदद के बदले पैसे लेना या देना ठीक है और कब ये रिश्ते की गर्माहट छीन सकता है। वो सामाजिक और बाजार वाले नियम याद है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल।
दूसरों से अपनी उम्मीदों को लेकर ईमानदार रहें और जरूरत पड़ने पर उन्हें एडजस्ट करें, इससे बेवजह की निराशा से बचेंगे।
और खरीदारी करते वक्त वो डिकॉय इफेक्ट और एंडोमेंट इफेक्ट से कैसे बचें?
तुलना करते समय डिकॉय विकल्पों से सावधान रहें, हर चीज को उसकी अपनी मेरिट पर देखें। और कोई चीज सिर्फ इसलिए ना रखें कि वो आपकी है, पूछें क्या ये उपयोगी है, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है। एंडोमेंट इफेक्ट को पहचानें।
सही। और सेहत के लिए भी कुछ टिप्स हैं, वो प्लेसिबो वाली बात।
हाँ, पॉजिटिव सोच की ताकत का इस्तेमाल करें, विश्वास रखें कि इलाज काम करेगा, इससे उसके असर करने की संभावना बढ़ सकती है।
अच्छा।
और कोई बुरी आदत छोड़नी है तो इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय माहौल बदलें।
माहौल बदलें मतलब?
जैसे अगर मीठा छोड़ना है तो घर में मीठा रखना ही बंद कर दें। टेम्पटेशन को रास्ते से हटाना ज्यादा आसान है।
हाँ, ये बात तो सही है।
इस पूरी बातचीत के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अपनी गलतियों और सोचने के पैटर्न को पहचानना ही समझदारी की तरफ पहला कदम है। हम इंसान परफेक्ट नहीं है, हम गलतियां करते हैं, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। ये जानना कि हमारी अतार्किकता का भी एक पैटर्न है, ये अपने आप में एक ताकत है।
और मेरे लिए ये एहसास कि हम अपने माहौल और चीजों को पेश करने के तरीके से कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं।
हाँ।
हम भले ही सोचते हों कि हम स्वतंत्र फैसले ले रहे हैं, पर शायद हम अक्सर अदृश्य धागों से बंधे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपने और दूसरों के लिए बेहतर, ज्यादा मददगार माहौल बनाने के लिए कर सकते हैं।
बिल्कुल। ये किताब सिर्फ हमारी कमजोरियां नहीं बताती बल्कि हमें थोड़ा ज्यादा होशियार बनने का रास्ता भी सुझाती है।
और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।